ये बताइएगा कि बुजुर्गों के तुफैल से दुआ मांगना क्या ये जायज़ अमल है?
यानी इसके माने क्या है? मैं तो कभी आज तक यही नहीं समझ सका। दुआ मुझे करनी है तो अल्लाह की हमदो सना करूँगा, अपनी आजजी का एतराफ़ करूँगा, अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होऊंगा, वो मुझे देख रहा है, निगरान है, मुझे सुन रहा है, तो उसके ऊपर किसी का कोई हक कायम होता है कि मैं उसको दरमियान में लाऊं और फिर ये कहूं कि चूंकि ये साहब आपके बड़े ही चहीते हैं या इनके साथ आपका कोई खसूसी ताल्लुक़ है तो वैसे तो आप मुझ पर करम फरमाएंगे नहीं, लेकिन इनका लिहाज करके कर दें, तो ये अल्लाह ताला की शान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। चुनांचे पैगंबरों के ज़रिए से जो दुआ मांगने का या अल्लाह से कोई दरख्वास्त करने का तरीका बताया गया है उसमें आपको इसका कोई शायबा भी कभी नज़र नहीं आएगा। वो दुआएं देखिए जो दाऊद अलैहिस्सलाम ने की हैं और ज़बूर की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं, पैगंबरों की दुआएँ जो बाइबल के सहाइफ़ में नकल हुई हैं, कुरान में जो पैगंबरों की दुआएँ नकल हुई हैं, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएँ हैं उनमें कहीं आपको इस तरह ही कोई चीज़ मिलती है? तो अल्लाह की बारगाह में जाने के आदाब हैं, आदमी को सोचना चाहिए किसकी बारगाह में जा रहा है। यहाँ अदना दर्जे में ये ख्याल करना कि वो वैसे तो मेरी सुनेगा नहीं, अलबत्ता फ़लाँ का लिहाज करके सुन लेगा, ये आखिरी दर्जे की इहानत है। अल्लाह ताला के मामले में आदमी को मुतनब्बे रहना चाहिए। हमारे यहाँ बाज़ शख्सियात ख़ास तौर पर पैगंबरों के बारे में तो लोग हसास होते हैं लेकिन बारगाह खुदावंदी के बारे में हसास नहीं होते। दरा हले के सबसे बढ़कर उसी बारगाह के बारे में एहसास होना चाहिए। तो अल्लाह की बारगाह में जब आप जा रहे हैं तो उसके आदाब वही हैं जो पैगंबरों ने सिखा दिए हैं, लिहाजा इस तरह की ना दुआएं करनी चाहिए ना ये तरीके इख्तियार करने चाहिए। ये दीन के लिए, पैगंबरों की दावत के लिए, उनके उसवा के लिए बिल्कुल अजनबी चीज़ें हैं, इनका किसी मुसलमान को तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। हमें बताया गया है कि दुआ कैसे करनी है और इसकी ऐसी तालीम दी गई है कि हर नमाज में 5 वक्त हम हर रकत में वो दुआ करते हैं जो सबसे बड़ी दुआ है सूरह फातिहा, और उसमें यही हमें हिदायत की गई है कि दुआ करने के आदाब क्या है, यानी अल्लाह की सिफात का हवाला देते हैं, अल्लाह का नाम बयान करते हैं, अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ का इजहार करते हैं, अपनी बंदगी का एतराफ़ करते हैं, उसके बाद कहते हैं अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यही दुआ करने का सही तरीका है।
ठीक अजाम साहब, इसमें लोग ये भी कहते हैं बसा औक़ात कि हम बाज़ बुज़ुर्गों को जो अल्लाह वाले हैं, जो नेक लोग हैं, दीन के बड़े उलमा हैं, उनके साथ अपने ताल्लुक़ का इजहार करते हैं, हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को ये हवाला देकर कि या अल्लाह ये देखें इतने नेक आदमी हैं और मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा ये जुड़ना भी एक नेकी है, इस नेकी के तुफैल कम से कम तू मेरी तरफ नज़र इनायत फरमा।
नहीं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई है? अगर किसी बुज़ुर्ग को आप अपना बुज़ुर्ग समझते हैं तो जाएँ उनसे दरख्वास्त कर दें कि वो भी आपके लिए दुआ करें, वो भी बंदा मोहताज, आप भी बंदा मोहताज, ये चीज़ क्या है? और अल्लाह के यहाँ कौन नेक है कौन नेक नहीं है इसके फैसले मैं या आप कौन होते हैं करने वाले? यानी हम दरख्वास्त कर सकते हैं, जैसे कि ख़ुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम भी अपने लिए दरख्वास्त करो, मुनाफिकीन से कहा है तुम भी दरख्वास्त करो, या कमज़ोर मुसलमानों से कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाए, और हुजूर से भी कहो कि वो आपके लिए दुआ करें। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी किसी बुज़ुर्ग से ये कहना कि आप मेरे लिए दुआ कर दें ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी बुज़ुर्ग का वास्ता अल्लाह के सामने पेश करना या जिस तरह के बाज़ अल्फाज वसीले के आम तौर पर लोगों की ज़ुबान पर आ जाते हैं ये बिल्कुल आदाब के ख़िलाफ़ है।
ठीक अच्छा, हम सब ये जितने हमारे यहाँ शिर्क के मज़ाहिर हैं और इतनी बड़ी बड़ी हमें जिसको आप कहते हैं इन्हराफात नज़र आते हैं, लोग कब्रों को जाकर बाकायदा सजदा कर रहे हैं और इस तरीके से उन बुज़ुर्गों को हाजिर व नाजिर मान रहे हैं, उनसे जो है मुख्तलिफ रसूम व आदाब उन्होंने वाबस्ता किए हुए, इन सब की जो इब्तदा है वो इसी तरह के तवहुमात ही से हुई होगी ना, कि पहले ये कहा होगा कि इनके तुफैल से को थोड़ी हम सिफारिश करते हैं और फिर उसके बाद करते करते वो खबरों पे चले गए, फिर नजराने पेश करने शुरू कर दिए, तो ये रास्ता अगर खुल जाए तो फिर इसका इसकी जो इंतहा है वो बिदत की सूरत में निकलती है।
बात यह जी कि जब अल्लाह का दीन हमें दे दिया गया और अल्लाह ने पैगम्बर भेज के अपना दीन दे दिया और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमें हासिल होती है वो अल्लाह से क्या मामला करना है, इसलिए कि उसमें हमारी अक्ल खुद फैसला नहीं कर सकती। हमारे परवरदिगार के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है, इस ताल्लुक़ का इजहार कैसे करना है, इसके मरासिम क्या हैं, अल्लाह की इबादत अगर करनी है तो वो कैसे करनी है, इताअत करनी है तो किन हदूद में करनी है, यही बातें बताने के लिए पैगंबर आए हैं। तो जब उन्होंने ये बातें बता दी तो आप अदना दर्जे में भी इसमें अपनी तरफ से कोई चीज़ दाखिल करेंगे तो वही चीज़ है जिसको रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत से ताबीर किया है। दीन में आप जानते हैं कि अगर मज़हबी लिहाज से देखा जाए تو دو ہی سب سے بڑے جرم ہیں، ایک شرک اور ایک بدعت، تو اس کے تو بالکل قریب بھی نہیں جانا چاہیے. جو طریقہ عبادت کا اللہ نے بتایا، دعا عبادت ہے بلکہ عبادت کی اصل ہے، دعا کرنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے، تابقاً نال بے نال اس کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ کہیں بارگاہ خداوندی کے آداب کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. یہ معمولی بات ہے کہ آپ نے جانا ہے. ہمارے ہاں جو اس کے لیے نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے، یہ دعا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے. آپ کھڑے ہوئے، آپ نے وضو کیا، آپ بارگاہ خداوندی کے استحضار کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے، دنیا سے بے تعلق ہو کے، خالصتاً خدا کی طرف متوجہ ہو کے رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ قعدے میں بیٹھ کے پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ دعا کرنے کے طریقے ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے. اس طریقے سے اگر آپ راستے کھولیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ توہمات کے بطن سے توہمات برآمد ہوتے جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ اپنی طرف سے دین ایجاد کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ جو دین لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہوا ہے، جس میں رسوم ہیں، جس کی اپنی عبادات ہیں، جس میں اسی طریقے سے قبروں پر جانا ہے، چلے کرنے ہیں، اس سب کا ہمارے دین کی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سر تسر بدعتیں ہیں جن سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے.